उसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं। शरीर छूट गया तो भी उसी प्रकार से, और जब तक नहीं शरीर छूटा तब भी उसी प्रकार से अपने आत्मा स्वरूप भी दिखते। लेकिन उपासना मार्ग में व्यक्ति सारे जीवन उपासना करता है, भक्ति करता है, तो सारे जीवन परमात्मा का स्मरण करते 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 और जीवन का अंतिम समय भी आ जाता है। और जब जीवन का अंतिम समय आता है तो उस समय अब जैसा उसने सारे जीवन उपासना की है वो उस समय उसके काम आती है। ऐसा नहीं है कि उपासना करते हुए सारे जीवन कोई लाभ नहीं होता, सारे जीवन भी लाभ होता है। उसका चित्त निरंतर शुद्ध होता रहता है, एकाग्र होता रहता है, अंतर्मुखी होता रहता है, शांत विश्राम प्राप्त करता रहता है। लेकिन इस प्रकार का उपासक जब शरीर छूटने लगता है तो उसे अपने अभ्यास के अनुसार परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है तो फिर वो उच्च लोक को पार करते हुए, अंधर्म लोक है, पितृ लोक है, स्वर्गारी लोक है, उन सब लोकों को पार करते हुए अंतर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और वहां जाकर के वो जीव ब्रह्मलोक में वास करता है। और ब्रह्मलोक में वो तब तक वास करता है जब तक कि सृष्टि चलती रहती है। ये जब तक कि कल्प चल रहा है और जब तक कि ब्रह्मा जी वो अपना सृष्टि का कार्य चला रहे हैं तब तक वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके ब्रह्मलोक में कल्प के अंत तक वास करता है। उसके बाद सृष्टि समाप्त होती है तब ब्रह्मा जी उस परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं के साथ ब्रह्मलोक में स्थित जितने भी प्राणी हैं वे सब ब्रह्मा जी के उपदेश से उन्हीं के साथ परब्रह्म परमात्मा में वे विलीन हो जाते हैं और उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये जो मुक्ति का क्रम है यह उपासकों का है, वो इस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचते हैं। ये है सभी उपनिषदों में ये मार्ग स्वीकार किया गया। दोनों ये दोनों मार्ग जिस प्रकार के ज्ञान के द्वारा सद्यामुक्ति, उपासना के द्वारा क्रमिक मुक्ति, इसका वर्णन फिर ब्रह्म सूत्र के चौथे पाद में भी आया और भगवान शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या की और इन दोनों मार्गों का विस्तृत वर्णन वहां किया। इसके बाद फिर देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का आठवां अध्याय देखें तो उसमें भी इसी का वर्णन है। आठवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे जीवन मेरा स्मरण करता रहता है वो अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छूटता है और मुझको ही प्राप्त कर लेता है। उसी अध्याय में भगवान दो प्रकार के मार्गों का वर्णन करते हैं, जो ज्ञानियों के मार्ग से हटकर के अन्य व्यक्तियों के उपासकों का मार्ग है और एक कर्मकांडियों का मार्ग है। भगवान ने दो मार्ग इस प्रकार से बनाए, एक लोग जो अपने स्वधर्म का पालन, सामान्य धर्म का पालन करते हुए भौतिक सुख के स्वर्ग की कामना रखते हुए सारा जीवन जीते हैं, तो ऐसे लोग धूम्र मार्ग से जाते हुए, चंद्र मार्ग से जाते हुए स्वर्ग तक जाते हैं और स्वर्ग के सुने के बाद में और पुनः मनुष्य शरीर में फिर आ जाते हैं। एक मार्ग तो ये है। दूसरा मार्ग ये वो हो जो व्यक्ति की इनकी कामना इनकी छोड़ी और निरंतर सारे जीवन परमात्मा ना करते रहे, स्मरण करते रहे हैं, वे लोग उपासना और भक्ति के बल पर हर्ष मार्ग से या उत्तरायण के मार्ग से या सूर्य मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते और वहां से कालांतर में उनकी मुक्ति हो जाती। यह दोनों मार्गों का आठवें अध्याय में वर्णन है। इन सर्वत्र स्थानों को सबको देख करके अध्ययन करें, विचार करें तो वो ये बात जो यहाँ पर इन दो श्लोकों में 17-18 श्लोकों में कही गई है वो स्पष्ट हो जाए। इन 17-18 श्लोकों में किसी अर्थ मार्ग या सूर्य मार्ग या प्राण मार्ग को ध्यान में रखकर के ये दोनों श्लोक कहे जा रहे हैं। पहले श्लोकों के अर्थ को देखें फिर उसका उसी परिप्रेक्ष्य में उसका स्पष्टीकरण भी देखें। कहते हैं वायु अनिलम अमृतम। एक व्यक्ति जो है वो सारे जीवन उपासना करता रहा, सूर्य उपासना और उसके द्वारा परमात्मा की उपासना करता रहा। अब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब वो ये कहता है कि ये जो वायु हमारी प्राण वायु है ये समस्त वायु में विलीन हो जाए। और अथ इदम भस्मांतम शरीरम, और इदम शरीरम भस्म अंतम, ये शरीर भस्म होकर के अंत हो जाए, माने ये शरीर भी अपने पंच महाभूतों में लीन हो जाए, प्राण प्राणवायु में लीन हो जाए। और ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, और ओम का यानी परमात्मा का जो स्मरण करते रहे सारे जीवन उसका इस समय से स्मरण करो। अपने मन को समझाते हैं कि अपने मन से कि तुम परमात्मा का स्मरण करो। कृतम स्मर बार बार बोला, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि मन और अपने विचार करे, केवल परमात्मा का ही चिंतन करे, ओम का ही चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे। अब देखिए इस श्लोक से ये मालूम होता है कि जीव वैसे तो सामान्य रूप से शरीर छोड़ता है, जब अपना स्थूल शरीर छोड़ेगा तो उसकी जिस प्रकार की वासनाएं होती हैं मरते समय उसी प्रकार का स्मरण आता है। यम यम भाव स्मरण त्यजते कलेवन, आठवें अध्याय भगवान कहते हैं जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त होता है। ये नियम सारे जीवन व्यक्ति ने जिस प्रकार के कर्म किए उसके संस्कार बन गए, उसी प्रकार की वासनाएं बन गई, और जैसी वासनाएं सारे जीवन में प्रधान रूप से बन गई वही वासनाएं वही संस्कार व्यक्ति के शरीर के छूटते समय एकदम सामने आ जाते हैं और वही दिखाई देते हैं, उसी का स्मरण आता है। और अंत समय में जैसा स्मरण आता है उसी से पता लग जाता है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद किस गति को प्राप्त करेगा। यदि व्यक्ति संसार की भौतिक वस्तुओं का स्मरण करता है, भवन का, धन का, संपत्ति का, राज्य का, तो उसका परिणाम होता है वो शरीर छोड़ करके इसी प्रकार की वस्तुएं अगले जीवन में पशु पक्षी इत्यादि बन करके उनको प्राप्त करता है। कभी कभी कुछ लोग हैं वो शरीर छोड़ते समय अपने पुत्रों का स्मरण करते हैं, पुत्रियों का स्मरण करते हैं, भाई बंधुओं का स्मरण करते हैं। जब उनका स्मरण करते हैं तो कहीं न कहीं उन्हीं अपनी भाई बंधुओं में ही जाकर के पुनः मनुष्य का शरीर फिर प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी लोग जो है शरीर छोड़ते समय स्वर्ग का स्मरण करते हैं, सारे जीवन उन्होंने स्वर्ग की कामना की, दान पुण्य इत्यादि करते रहे, ये इच्छा करी शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो जैसे स्वर्ग की वो कामना करते रहे शरीर छोड़ते समय उसी का स्मरण आता है और वो स्वर्ग में जा करके देवता बन करके वहां पर बहुत काल तक वास करते हैं और स्वर्ग का सुख भोगते रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोविज्ञान के नियमों से ये सिद्ध होता है। विचार करें तो भी लगेगा कि कार्य कारण नियम इसमें कार्य कर रहा है कि जिस प्रकार का व्यक्ति के स्वभाव जैसी उसकी कामनाएं जैसी इच्छाएं वही मृत्यु काल में प्रधान बन जाती हैं और वही उसके लिए प्रारब्ध का काम करते हैं और वही प्रारब्ध के अनुसार उस व्यक्ति को अगला शरीर कुछ प्रारब्ध के भोग के अनुकूल दूसरा शरीर प्राप्त। यदि व्यक्ति का प्रारब्ध इस प्रकार का है कि जिनका भोग भोगने के लिए उसे पशु का शरीर चाहिए तो उसे पशु का शरीर मिल जाएगा। यदि ऐसा प्रारब्ध है जिसका भोग के लिए मनुष्य शरीर चाहिए तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। यदि ऐसा प्रारब्ध है जिसके की भोग के लिए स्वर्ग चाहिए तो उसे स्वर्ग का देवता का शरीर प्राप्त हो जाए। तो ये प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करेगा कि अगला शरीर कैसे प्राप्त, और प्रारब्ध निर्भर करेगा समस्त जीवन में जिस प्रकार के कार्य किए, जिस प्रकार के संस्कार बने, जिस प्रकार का चिंतन भावना की और उसी भाव से भावित हो गया, वो इसकी दृष्टि बन गई। ये बात जो है विशेष से ध्यान में रखनी है। कोई भी व्यक्ति चाहे अशुभ कर्म करने वाले भी हैं, तो अशुभ कर्म करने वाले जीवों को भी अंतकाल में अपने अशुभ कर्मों का स्मरण आता है, पाप कर्मों का स्मरण आता है, और उनको भय भी लगता है शरीर की छोड़ते समय। और जब शरीर छूटता है तब पाप कर्मों को भोगने के लिए जो शरीर आवश्यक है वही शरीर उसको मिल जाता है। पुण्य कार्य करने वाले व्यक्ति को सारे जीवन जिसने पुण्य कार्य किया अपने पुण्यों का उसे उस समय स्मरण आता है, और उन पुण्यों के फलरूप कुछ लोगों की स्वर्ग आदि लोगों की उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही प्रकार की स्थितियां जो है वो व्यक्ति पुनरावर्ती स्थितियां, पुनरावर्ती जहाँ जाता है वहां से लौट करके आता है, नरक जाता है, पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त करता है, तो पापों का भोग भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर में पुण्य कार्य किए हैं तो गंधर्व लोक आदि स्वर्ग लोक आदि पहुंचता है, वहां पर सुख भोगने के बाद में फिर लौट करके मनुष्य शरीर में आता है। इसको कहते हैं पुनरावर्ति गति। तो पुनरावर्ति गति कब तक है? जब तक कि व्यक्ति धर्म इत्यादि का कार्य कर रहा है तब तक पुनरावर्ति है। जब वो धर्म का पालन करते हुए भौतिक तीर्थ और स्वर्ग लौकिक वस्तुओं की कामना करता है तब तक वो भी स्वर्ग तक जाकर के अपने शरीर में लौट आता है। यहाँ से यहाँ तक की जो गति है ये है पुनरावर्ति गति है, पापियों की भी और पुण्यात्मा लोगों की दोनों की। लेकिन इसके बाद में ये है जब व्यक्ति परमात्म को सिद्ध कर लेता है इस मार्ग में आगे बढ़ता व्यक्त होकर के आगे साधना उसकी चलती है तो उसकी अपनरावर्ती मार्ग उसका है, माने फिर उसे लौट करके नहीं आना पड़ता। ज्ञान विज्ञान के द्वारा तो इसी जन्म में इसी शरीर के रहते ही हुए वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और पूर्णता में स्थित हो जाता है, आत्मभाव प्राप्त करके परमात्मा भाव स्थित हो जाता है, उसके लौटने के तो इसी जीवन में कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जो व्यक्ति उपासना और भक्ति करने वाले हैं वे व्यक्ति भी क्रम क्रम से जैसा कि पहले बताया स्वर्ग आदि लोगों से सब लोगों से ऊपर उठता हुआ ब्रह्म लोक को पहुंच करके वहां ब्रह्म लोक में बात करता है और वहां से फिर लौट करके उसको भी नहीं आना होता। चाहे वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो लौट करके फिर उसे नहीं आना पड़ता, मुक्त हो जाता है, और उपासना और भक्ति के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त कर ले तो भी उसे लौट करके नहीं आना पड़ता, इसलिए इसको अपनरावर्ती मार्ग कहते हैं। जहां पहुंच करके वृत्त भगवान 15वें अध्याय में भी कहते हैं जगह जगह बहुत जगह जहां पहुंच करके व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ता, तब धामम परमम मम वो मेरा परम धाम है। बस भगवान का ही वो परम धाम है जहां से व्यक्ति को लौट करके आना नहीं पड़ता। बाकी और जितने भी लोक हैं उन सब लोकों में जाकर के व्यक्ति अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है और लौट करके आ जाता है। कैसे लौट करके आ जाता है इसका अनुभव हम लोग नित्य करते हैं। स्मरण करें तो आपका पता लगेगा कि हम स्वर्ग नरक में रोज जाते हैं और रोज लौट करके आ जाते हैं। रात्रि में जब सोते हैं तो सोने पर जो स्वप्न दिखाई देता है तो किसी व्यक्ति को जो स्वप्न दिखाई देता है स्वर्ग में स्वप्न दिखाई देता है, और किसी व्यक्ति को स्वप्न दिखाई देता है तो नारकीय स्वप्न दिखाई देता है। जो सब जीवन सारे जीवन दिन में पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाले हैं, कलुषित कार्य करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति रात्रि में जब सोते हैं तब सोते समय फिर उन्हें दिखाई देता है भयंकर स्वप्न दिखाई देता। जैसा उसने पाप कर्म किया हूबहू ऐसा स्वप्न में दिखाई दे ऐसे नहीं, उसके जो कुछ पाप कर्म किए हैं उनके प्रतीक बन जाते हैं। भय उत्पन्न करने के जैसे व्यक्ति को पाप कर्म किए हैं तो उसे भय रूपी पीड़ा नहीं चाहिए, तो आप स्वप्न में फिर उसको सर्प दिखाई देंगे, सिंह दिखाई देंगे, उसके सामने पीछे लगे हुए पुलिस वाले दिखाई देंगे, वो अपने आप को देखेगा कि पुलिस पकड़ने को दौड़ रही है, हम भागे भागे कर रहे हैं। किस प्रकार से जैसे वो सुबह रात्रि में स्वप्न दिखाई देंगे, तो ये जितने भी भयंकर स्वप्न हैं और लड़ाई झगड़े के स्वप्न है, मारकाट के स्वप्न है, किसी से लड़ाई हो रही है, किसी ने मारा है, हाथ पैर टूट गए हैं, ये जो सपने में देख रहे हैं ये सब व्यक्तियों को और कुछ नहीं, चाहे ये जीवन के पापों का फल हो और चाहे पूर्व जन्म के पापों का फल हो, वह व्यक्ति रात्रि में सपने में उनका भोग भूखता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सब जीवन पुण्य कार्य करता रहता है उसका चित्त शांत है, निर्मल है, पवित्र है, वो रात्रि में जब सोता है तब उसको प्रिय सपने दिखाई देते हैं, जहाँ पर शांति है, विश्राम है, जहाँ पर जहाँ कहीं बैठे हुए लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ भी आध्यारात हो रही है, शांत पूर्वक बात हो रही है, कहीं झगड़ा के साथ कहीं कुछ नहीं है, वहाँ सबका व्यवहार मधुर है, सुंदर प्रकृति है, शांतमय वातावरण है, ये सपने में इस प्रकार के देखते हैं। और यदि कहीं व्यक्ति इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गया है तो मानो उसके समस्त वासना ही एक प्रकार से क्षीण हो गए। हर ऐसे व्यक्ति स्वप्न दिखाई देता है, उस स्वप्न में भी स्वप्न बहुत कम दिखाई देगा, ऐसे व्यक्ति के स्वप्न स्वीकृतावस्था अधिक होगी और स्वप्न कम दिखाई देगा, एक बात हुई। और दूसरी बात, स्वप्न भी दिखाई देगा तो स्वप्न में आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, परमार्थ की चर्चा हो रही है, बस वही बात स्वप्न में, स्वप्न में भी मंदिर है, भगवान है, पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, आत्म चिंतन हो रहा है, परमार्थ चिंतन हो रहा है, इस प्रकार से प्रेम कीर्तन हो रहा है, बस इस प्रकार के ही उसे स्वप्न दिखाई। तो स्वप्नों से हमें ये स्वप्न एक ऐसा साधन है जिसके के द्वारा हम अपने अंतरतम में प्रविष्ट होकर के अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपनी वासनाएं, अपने प्रारब्ध को यथावत जान सकते हैं कि कैसे हम जागृता अवस्था में अपने आप को चालीसरा भला समझे, चालीसरा ज्ञानमान समझे, लेकिन अगर स्वप्नावस्था में पहुंच करके हमको चिंता पीड़ा इत्यादि प्राप्त हो तो इसके माने है कि हमारे अभी संस्कारों का प्रक्षालन नहीं हुआ है, अभी अशुभ संस्कार हमारे घर। बात यह होती है कि स्वप्न के समय हमारे मन और बुद्धि ये दोनों विश्राम करने लगते हैं, कार्य नहीं करते, लेकिन चित्त जो है वो कार्य करता रहता है सोते समय, और चित्त सुषुप्तावस्था में भी कार्य करता रहता है और चित्त स्वप्नावस्था में भी कार्य करता है। स्वप्नावस्था में भी मन बुद्धि पहुंच जाते हैं, वहां रहते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो शरीर के साथ संबंध रख करके बाह्य जगत से व्यवहार करता है वो माइंड जो है विश्राम करता है, बाकी मन बुद्धि स्वप्न को देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुख दुख का भी अनुभव करते हैं, स्वप्न को जानते भी हैं, और स्वप्न की जो रचना होती है वो हमारा चित्त ही उसकी रचना करता है, और चित्त में हमारे पूर्व संस्कार प्रभाग्य जो इकट्ठे हैं, भंडार भरा हुआ है, ये सब अपने अंदर जो रहस्य है इसको याद रखना चाहिए, इसको स्मरण रखना चाहिए, ये स्थिति हमारे अंदर है। और अपने व्यवहार में व्यक्ति सावधान रहे कि हमारे संस्कार कुत्सित न बनने बाद में, उनमें पाप करने त्याग के कार्य न हो, क्रोधादि लड़ाई झगड़ा जागृता अवस्था में काम न करें जिससे कि हमारे संस्कार चित्र में पहुंचे, हमारे संस्कार मलिन संस्कार बने, दूषित संस्कार बने, और उससे फिर भयंकर स्वप्न हमको देखने पड़े, और यदि शरीर छूट गया है तो उसके बाद फिर हमको ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, पीड़ाएं हैं, भय हैं, चिंताएं हैं, ऐसे लोग फिर हमको प्राप्त न हो, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों को ये सब पता है, शास्त्रों को जिन्हें देखा, चिंतन किया और ठीक ठीक उनको इस बातों के सबका ज्ञान है, वे लोग अपने व्यवहार काल में विचार रखते हैं और ये देखते हैं कि हमें अपने मन को शांत, निर्मल, पवित्र रखना ज्यादा आवश्यक है कि पाप करने के द्वारा भौतिक सामग्री इत्यादि उनको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना वो ज्यादा आवश्यक है। दोनों की जब तुलना करेंगे तब व्यक्ति को पता लगेगा कि चाहे अपना धर्म का पालन करते हुए और परिश्रम करते हुए और सच्चाई ईमानदारी के साथ जीवन जीते हुए जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसमें हमको भोग्य पदार्थ थोड़े ही मिले, ज्यादा न मिले, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस न बने, बहुत बड़े बड़े मकान न बने, बहुत बड़े बड़े परिवार और उत्पादन न बने, लेकिन मन शांत बना रहे, मन निर्विकार बना रहे, मन शुद्ध बना रहे, क्योंकि वही हमें स्वप्नावस्था में भी सुख देगा और शरीर छोड़ने के बाद में भी वो उच्च लोगों में ले जाएगा, वहां भी हमको सुख प्रदान करेगा। विचारवान व्यक्ति सदा अपने मन की और अपने बुद्धि की और अपने संस्कारों की रक्षा करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति जो अपने आप ही अपने शत्रु हैं, अपना विनाश करने वाले हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे भीतर क्या हो रहा, हम कितने परेशान हो रहे हैं, कितनी चिंताएं हमारी बढ़ रही हैं, कितने भय हमारे बढ़ते जा रहे हैं, कितने हमारे संस्कार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो ये लोग हैं वो हो ना समझ व्यक्ति उस तरफ मूल लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। वे लोग तो बाह्य जगत को ही देखते हैं और समझते हैं कि बाह्य जगत की वस्तुएं जितनी अधिक हमारे पास आ जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, उनको जितना अधिक हम प्राप्त कर लेते हैं उतना ही अधिक हम सुखी हैं और उतना ही अधिक लोग हमारा सम्मान करेंगे और वही सबसे अच्छा। ये ना समझी की बात, इतना विचार करना चाहिए। शास्त्रों का प्रयोजन ये कि जो सत्य है वो सामने रखते हैं कि देखो सत्य ये है। अब सत्य को जान करके कभी कोई व्यक्ति जो वो हो जानबूझ करके जैसे कोई मक्खी नहीं खाता, इसी प्रकार से शास्त्री कहते हैं जिसको कि ये ज्ञात होता है कि सत्य ये है, तो वो फिर व्यक्ति गलत रास्ते पर पैर रखने का साहस नहीं करता, सावधान रहता। इसलिए इस श्लोक में ये कहते हैं कि देखो शरीर छोड़ने के साथ अब वो व्यक्ति जो है जो शरीर उपासक जो है वो शरीर छोड़ते समय उसे अपने शरीर में मोह नहीं, अपनी स्वेच्छा से कह रहा है वो कि अब जो है वो शरीर समाप्त हो और पंच महाभूतों में मिल जाए। ये जो प्राण है प्राणवायु है ये भी वायु में समस्त वायु में ये भी विलीन हो जाए, प्राण समाप्त हो शरीर समाप्त हो, लेकिन वो अपने आप को ही सोचता है कि बस अब हम जो वो हो अपना जो सारे जीवन उपासना करते रहे जिस परमात्मा भाव को हम चिंतन करते रहे, परमात्मा का भगवान का चिंतन करते रहे हैं, बस उसी का स्मरण हमको आवे और शरीर छोड़ने के बाद में हमको उसी की प्राप्ति हो, ये वो विचार करता रहता है। तो जो अंधकार में परमात्मा का स्मरण करता है गीता में आठवें अध्याय के अनुसार अंतकाले से मामे वो स्मरण मुद्वा कलेवरम, प्रयाण काल के बड़े शरीर छोड़ते समय जब वो कहते हैं कि मामे वो मेरा ही स्मरण करते हुए जो प्राणी शरीर छोड़ता है वो क्या होता है, यह प्रयास मद्भावम, जो इस प्रकार से जाता है वो फिर मद्भावम सोति गच्छति, मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया, भगवान कहते हैं वो फिर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, इसमें रंज मात्र भी संशय नहीं है। अब इसमें संशय नहीं है कि निश्चयात्मक बात इस प्रकार की है, भगवान के वचन है वही बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास कौन लोग पहुंचते हैं जो शरीर छोड़ते समय मेरा ही स्मरण करते हैं और भगवान को छोड़कर के और कोई दूसरा स्मरण नहीं करते। तो अंधकार में इस प्रकार का स्मरण कब आ रहा, कोई व्यक्ति सोचे कि चलो ठीक अब सारे जीवन हमें क्या उपासना करनी क्या करनी, जब अंतिम समय आएगा तो उस समय हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के साथ हो गया व्यक्ति, तो उस समय अंतिम समय जब आता है व्यक्ति का तो उसको अपने मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता, अपनी वासनाओं संस्कारों के ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता। ये नहीं कि जो अशुभ संस्कारों के किनारे पर हम भगवान का स्मरण करेंगे, हम भगवान का स्मरण करेंगे और ऐसा करके भगवान का स्मरण कर ले तो उत्तर नहीं सकता, वो तो जैसे संस्कार है वैसे ही स्मरण आएगा। अब इसको भी देख लो, अपने आप के अनुभव पता लग जाएगा, कोई व्यक्ति रात में स्वप्न देखना चाहे कहे कि हम खराब स्वप्न देखेंगे नहीं, हम भयंकर स्वप्न देखेंगे नहीं, हम तो अच्छे ही स्वप्न देखेंगे, बहुत सुंदर स्वप्न आनंद सुखदायी वही हम स्वप्न देखेंगे, ऐसा संकल्प करके यदि कोई व्यक्ति सोए तो क्या होगा, तो क्या उसे अच्छे स्वप्न दिखाई नहीं दिखाई दे सकते, उसको तो वही स्वप्न दिखाई देंगे जैसे संस्कार हो। कोई व्यक्ति अपने संकल्प करके स्वप्न की रचना नहीं कर सकता, इसी प्रकार से मृत्यु के काल में भी कोई व्यक्ति अपने संकल्प से कोई स्मरण नहीं कर सकता, सारे जीवन जिस प्रकार के उसने अभ्यास किया होगा उस अभ्यास के अनुसार ही अपने आप से वैसे ही स्मरण आएगा, उसका स्वभाव उसकी प्रकृति के अनुसार स्वयं उस प्रकार का स्मरण आएगा। इसलिए अंत काल में भगवान का स्मरण आवे उसके लिए सारे जीवन भगवान का स्मरण करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मां मनुस्मर युद्ध चय, हे अर्जुन तुम युद्ध भी करते रहो लेकिन स्मरण मेरा ही करते रहो। मन जैसे अर्जुन के लिए बोल दिया इसलिए भगवान का कहने का मतलब अपने अपने कार्यों में लगे रहो, अपने अपने जो कर्तव्य कर्म है उनमें लगे रहो, करते रहो करते रहो, कर्म अपने हाथ से और अपने जहाँ कहीं लगे हैं उसको करो, लेकिन स्मरण भगवान कर। तो कुल कर्मों का एक दो कर्मों की बाधा नहीं बनी, भगवान का स्मरण करते रहने से जो कर्म हाथ से हो रहे हैं उनके कारण से नई वासनाएं नहीं बनेगी, नए संस्कार नहीं बनेंगे, पिछले संस्कार धीरे धीरे करके नष्ट होते जाएंगे। और भगवत स्मरण का संस्कार प्रबल होता जाए, व्यक्ति जितना ही जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी प्रकार के संस्कार बनते जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन बड़े प्रेम भाव से बड़ी भक्ति भाव से करे, दृढ़तापूर्वक निरंतर करता रहे, तो वैसे ही संस्कार से बन जाएंगे, अपने आप भगवान का स्मरण स्वभावतः आने लगेगा। तो भूले रहे तो मृत्यु काल में भी उसी प्रकार बना देगा। उसी भाव को याद करके इस मंत्र में बोला गया कि देखो मृत्यु समय वो व्यक्ति अपने मन से कहता है कि जिस परमात्मा का भी प्रतिष्ठन करते रहे उसी का